ओम नमो भगवते
असुर बालकों से बढ़कर
कहा कहाँ से
तुभ्यं
तुमको एषः इस बुद्धि बुद्धि का विपर्यया विकार प्रदूषण। अनुवाद आप करा सकते हैं। हे पुत्र प्रहलाद तुम्हारा शेम तथा कल्याण हो, तुम झूठ मत बोलना। ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो वे तुम जैसे नहीं हैं, क्योंकि ये सब पथ भ्रष्ट जैसे नहीं बोलते। तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखे? तुम्हारी बुद्धि इस तरह क्यों बिगड़ गई? तात्पर्य, प्रहलाद महाराज अभी बालक ही थे, अतः उनके अध्यापकों ने सोचा कि यदि इस बालक को फुसला सकें तो वह तुरंत सच बता देगा और प्रकट कर देगा कि किस प्रकार वैष्णव जन आकर उसे भक्ति का पाठ पढ़ा जाते हैं। निसंदेह यह विस्मयजनक था कि उसी पाठशाला के अन्य दैत्य बालक बिगड़े नहीं थे, केवल प्रहलाद महाराज ही वैष्णवों के उपदेश से बिगड़े थे। अध्यापकों का मुख्य कार्य था कि वे पता लगाएं कि वैष्णव कौन थे जो वहां आकर के प्रहलाद को शिक्षा देते थे और उसकी बुद्धि को बिगाड़ रहे थे। ओम अज्ञान तिमरतस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्विदितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामेयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपां सार्वजातं सहजगणं नाथान्वितं तं सजीवं सार्वैकं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां जयनन्दिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु करते हैं भगवान विभिन्न प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए। भगवान तो आत्माराम है, भगवान चाहे तो उनको किसी भी और व्यक्ति की सहायता की जरूरत नहीं है रसों का स्वादन करने के लिए, जैसे कि भगवान ने करके दिखाया ब्रह्म हिमवान लीला में, बाल गोपाल और ग्वाल बाल बछड़े गाय सब भगवान स्वयं ही थे और एक साल तक लीला उनके साथ चलती रही। लेकिन भगवान स्वराट है, वो स्वयं भी कर सकते हैं और वो चाहें तो अपने भक्तों के साथ भी लीला कर सकते हैं और करते हैं, भक्तों को भी आनंद प्रदान करने के लिए, लीलाओं को विस्तार करने के लिए, और भक्तों के माध्यम से भगवान समझाते हैं जनसाधारण को और जो उपदेश जो सिद्धांत है उनको स्थापित करते हैं भगवान। और जो भक्ति के दुआ में श्रवणम कीर्तनम, यदि भगवान लीला ना करें तो फिर भक्त लोग क्या श्रवण करेंगे और किसका कीर्तन करेंगे। हम लोग ये जो कथा है हम रोज सुनते हैं, रोज गाते हैं, इसलिए ना क्योंकि भगवान ने लीलाएं की हैं तो इसलिए भगवान लीला करते हैं, तो इन सिद्धांतों को भगवान स्थापित करते हैं। सभी लीलाओं में हम पाएंगे कि जो जो सिद्धांत हैं वो सब वही हैं, शास्त्रों में कहीं विरोधाभास नहीं है। तो जैसे भगवान ने भगवद गीता में बताया चातुर्वर्ण्य मया सिष्टम गुण कर्म भाग्यम, कि किसी की भी जाति जन्म से निश्चित नहीं की जाती है। जन्म से किसी की जाति निश्चित करना वो गलत है। और यहाँ हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु जो कि सर्वश्रेष्ठ असुर हैं वो भी एक सर्वश्रेष्ठ असुर का पात्र निभा रहे हैं, जैसे तो भगवान के भक्त हैं तो भगवान लीला में अपने भक्तों को शामिल करते हैं जैसे कि बताया। तो सर्वश्रेष्ठ असुर के यहाँ सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है प्रहलाद महाराज, उनका जन्म हुआ। तो वही सिद्धांत जो भगवान ने गीता बताया कि गुण कर्म के आधार पर व्यक्ति की जाति होती है, तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि अगर उसका असुर है तो घर में असुर ही जन्म लेगा, जैसा कि देवता लोग भी बदभवित हो गए। इंद्र ने सोचा कि ये तो महान असुर हिरण्यकश्यपु का पुत्र है गर्भ में, ये भी असुर ही होगा, तो उनकी माता के आदू का अपहरण कर लिया। नारद जी ने रोका उनको कि नहीं ये तो महाभागवत है। तो ऐसे महाभागवतों की कथा है भागवतों में। महाजन, महाजन मतलब अथॉरिटी, किसी भी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति बहुत ही उदाहरणीय तरीके से कोई कार्य करता है तो वो उस क्षेत्र में अथॉरिटी कहलाता है महाजन। जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं एक लेक्चर में बलि महाराज अथॉरिटी क्यों है, हम सब जानते हैं बलि महाराज ने बिल्कुल आत्मनिवेदन के आचार है ना, संपूर्ण शरणागति सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन एक सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया अपने उदाहरण से बताया कि जो भक्ति की अनुकूल है उसको स्वीकार कीजिए और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग दीजिए, चाहे वो कोई भी हो अपना गुरु ही क्यों ना। तो वो देखेंगे शुक्राचार्य जी जिनकी सहायता से उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए इंद्र का आसन प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब देखा कि वामन देव जो कि बता रहे हैं उन्होंने बोले तो सब विष्णु हैं इनको कोई संकल्प मत करना, तो आपने तो सिखाया था कि हम सबको विश्व को चिंता के लिए करते हैं, तो उन्होंने त्याग दिया फौरन से। प्रभु इसीलिए बलि महाराज अथॉरिटी है कि जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना चाहिए फौरन से। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भी जो है अपने आचरण से सिखाया, क्या सिखाया बहुत कुछ, हम तो ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। भक्ति जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित, जैसे भगवान स्वयं प्रकाशित होते हैं। माधुर्य कंदमनी में समझा रहे हैं श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कि भक्ति जो है स्वयं प्रकाशित होती है, जिस प्रकार से भगवान स्वयं प्रकाशित है। तो भक्ति को प्रकाशित करने के लिए और भक्ति को बढ़ने के लिए किसी भौतिक कारण की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की भी भौतिक परिस्थिति जो है वो भक्ति को ना तो उत्पन्न करने में सहायता बनती है और ना ही भक्ति को रोक सकती है। ये प्रहलाद महाराज के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हिरण्यकश्यपु जैसे पिता महान असुर, असुर हुआ जो कि भगवान से द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, और वो उनके पिता हैं जिनसे देवता भी कांपते थे जिनके सामने। अब प्रहलाद महाराज की छोटी सी आयु जब अपना पिता ही जान दुश्मन हो गया तो अभी कौन मदद करेगा, और किसकी इतनी मजाल है कि जो कि हिरण्यकश्यपु के सामने मदद करे प्रहलाद महाराज की। जितनी कठिन परिस्थितियों में प्रहलाद महाराज थे, शायद ही कोई, शायद क्या असंभव है, कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज क्या है, भक्त राज प्रहलाद। और ऐसा नहीं है कि वो रोते रोते भक्ति करते थे, एवं प्रसन्न मनसो, कोई दुख नहीं कि हे मेरे पिताजी मुझे इतना कष्ट देते हैं, ना सोचे थी ना काम से थी। तो बड़े प्रेम से जो है कभी विचलित नहीं हुए और अपने भक्ति में लगे रहे कि उन्होंने साबित किया। तो मतलब कि भक्ति बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वयं प्रकाशित, किसी भी भौतिक कारण, कोई भी भौतिक कारण जो है भक्ति को ना तो उत्पन्न कर सकता है, ना ही भक्ति को बढ़ाने में या रोकने में वो कारण बन सकता है। कई बार ऐसे कहते हैं कि सौभाग्य से भक्ति प्राप्त होती है, सौभाग्य से। तो वो समझाते हैं मधुरिका नंदी में कि यदि सौभाग्य से प्राप्त होती है तो सौभाग्य का कारण ढूंढना पड़ेगा, सौभाग्य का कारण क्या है। तो भाग्य तो बनता हमारे कर्मों से, अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए तो सौभाग्य, और अगर बुरे कर्म किए तो दुर्भाग्य। तो यदि सौभाग्य से भक्ति प्राप्त होती है तो क्या भौतिक शुभ कर्मों कर्म जो है वो भक्ति का कारण है? नहीं, इसका मतलब सौभाग्य से भी, सौभाग्य जो है भक्ति का कारण नहीं, क्योंकि कोई भी भौतिक कारण तो जो है भक्ति को उत्पन्न कर ही नहीं सकता। भागवत में 11वें स्कंद में भगवान बोल रहे यदि इच्छया, यानी कि ऑन इट्स ऑन स्वीट विल, अपनी स्वयं की इच्छा से भक्ति प्रकाशित होती है और अपनी स्वयं की इच्छा से बढ़ती है। भक्ति के कारण केवल भक्ति है, कोई भौतिक परिस्थिति जो है भक्ति को ना तो उत्पन्न कर सकती है, ना रोक सकती है, ना बढ़ा सकती है, कोई उसमें किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं होती है। श्री श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ देश राम की जय, की जय। फिर यदि हम कहेंगे भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, तो भगवान की कृपा का कारण ढूंढना पड़ेगा। नहीं जी, भगवान की कृपा तो कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा करते भगवान तो बिना किसी कारण के, बिना योग्यता विचारे। तो यदि भगवान बिना किसी कारण की कृपा करते हैं, भक्ति देते हैं, तो फिर सबको भक्ति देते हैं भगवान। ऐसा क्यों है किसी को भक्ति मिलती है, किसी को नहीं मिलती है? यदि बिना किसी कारण के भगवान सबको भक्ति देते हैं तो सबको भक्ति मिलनी चाहिए इक्वली, बराबर सबको। ऐसा क्यों है कुछ लोग भक्त हैं कुछ नहीं? तो क्या भगवान पार्शल है, भेदभाव करते हैं भक्ति देने में? तो हाँ जी, भगवान तो भेदभाव करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कितनी सहायता करते हैं, कितना उनके साथ प्रेम करते हैं, और असुरों का जो विनाश करते हैं। हालांकि वो ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही भगवान का, लेकिन देखने में लगता है। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए वो भेदभाव है, तो वो भेदभाव जो है वो भगवान का दोष नहीं है, दूषणम नहीं है, वो भूषणम है, भगवान का भूषण है, उसको बोलते हैं भक्त वात्सल्य। भगवान जितने भी गुण है उसमें सबसे जो विशेष गुण है, किंग ऑफ ऑल क्वालिटीज बोला गया, वो है भक्त वात्सल्य। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वहां क्या है कि भक्त और असुर में भगवान करें। लेकिन जब भक्ति देने का प्रश्न आ रहा था तो सबको बराबर देना चाहिए, उस समय तो भक्त नहीं है असुर। तो इसका मतलब यह है कि भगवान की जो कृपा है वो भी भक्ति का कारण नहीं है। ऐसा बताते हैं श्री विश्वनाथ ठाकुर माधुर्य का। तो फिर क्या भक्तों की कृपा, भक्तों की बिना कारण की अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटीज, वह हाँ ये है, भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन भक्त भी तो भेदभाव करते हैं, मैत्री कृपा उपेक्षा या करो तीसरा मध्यमा, तो कह रहे हैं ये भक्त को अनुमति है ना मध्यम अधिकारी को, कि वो देखता है कि कौन मासूम है, किसको उपदेश देना है, किसको नहीं देना है, ये उसको अलाउ किया गया है। वो भेदगांव निकला था, वो शास्त्र महिला हुए। तो भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है और भगवान जो है अपने भक्तों के वश में, इसलिए भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे चलती है। यदि भक्त कृपा करेगा तो भगवान भी कृपा करेंगे। इससे प्रसाद आत्मा प्रसाद हो, इससे प्रसाद नागति को तो। लेकिन अभी तो हम कह रहे थे कि यदि इच्छा भक्ति स्वयं प्रकाशित होती है तो इसका मतलब भक्ति के कारण जो है वो भक्तों की कृपा हुई। लेकिन भक्त कृपा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है। यदि किसी के हृदय में भक्ति नहीं है तो कैसे उसके अंदर दया जागृत होगी, कैसे कंपैशन, कैसे वो कृपा करेगा? तो हृदय में क्योंकि भक्ति है तो भक्ति से वो दया जागृत होती है और फिर उस दया से किसी और के हृदय में भक्ति जागृत होती है। तो भक्ति का कारण क्या है? केवल भक्ति, भक्ति का और कोई भौतिक कारण नहीं हो सकता। और ये हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के कारण से, नारद जी की कृपा से उनको भक्ति प्राप्त हुई। किसी प्रकार की इतनी कठिन परिस्थितियों में भी प्रहलाद महाराज कितनी प्रसन्नता से, महाजन अथॉरिटी है, ऐसा नहीं कि कोई ठीक है काम चला रहे थे, नहीं, बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से उन्होंने जो है ये स्थापित किया। इसलिए महाजन तो असुर को हमेशा तंग करते रहेंगे, विशेष रूप से कलयुग, ये तो कलयुग है, ये तो शत्रु की कथा हम पढ़ रहे हैं, पर ये तो कलयुग है। उस समय तो एक हिरण्य कशिपु थे, अभी तो ऐसे बहुत सारे मिनी हिरण्य कशिपु, तो असुर तो जो है तंग करते रहेंगे, क्योंकि ये असुरों का स्वभाव है, आसुर स्वभाव। और हम सब तो असुरों के शासन में जी रहे, जी रहे कि नहीं? क्षमा कीजिए, हमारी जो सरकार है क्या कहती है, धर्म निरपेक्ष है, जिसका कोई धर्म नहीं होता, धर्म निरपेक्ष सब कोई धर्म नहीं है, तो असुर है। हमारे किसी भी शिक्षा प्रणाली, जो हमारी आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप, कि अध्यापकों का मुख्य कर्तव्य था ये पता लगाना कि कौन आखिर इनको उपदेश देता है। वास्तव में यह अध्यापक का कर्तव्य है उपदेश देना, लेकिन वो उसको रोक रहे हैं कि कौन पता लगाओ कौन देता है उपदेश, ये हमारा काम कौन कर रहा है, हम तो करने रहे, हमारा काम कौन कर रहा है ये है। तो ये तो आज की शिक्षा प्रणाली तो है, बिल्कुल नास्तिक शिक्षा प्रणाली आज की हमारी। बच्चे जो है वो स्कूल में जाकर बिगड़ते हैं, घर में जब तक अगर ठीक रहते हैं, और जब आपने उनको स्कूल में भेज दिया है तो फिर उनका रंग बदलना शुरू होता है। तो ये हमारी आज शिक्षा प्रणाली है। प्रभुपाद ने बोला कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी है सेंटर ऑफ द साइंस, हिंदी से बोलेंगे अज्ञानता के केंद्र है, अज्ञानता के केंद्र है जो हमारी यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब ये मेरा भी नहीं है कि हम स्कूल कॉलेज या शिक्षा छोड़ दें, लेकिन उसको सही परिप्रेक्ष्य में कैसे लेना आज के वातावरण में वो समझने की जरूरत है। तो आज के हमारे स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, भगवान का तो कोई नाम निशान है ही नहीं, दूर दूर तक धार्मिकता या आस्तिकता से भी लेना देना नहीं है, और सभी प्रकार के जो पापपूर्ण कार्य है उसे व्यक्ति जाकर स्कूल कॉलेज में सीखता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, मूवीज, इलिसिट सेक्स, ये सब कहाँ सीखता है, घर में तो कोई सिखाता नहीं, कहाँ सीखता है। और जितने भी ये जो बोगस थ्योरीज हैं जो हम सुनते हैं, बिग बैंग और ये डार्विन और सब इस प्रकार की बातें रोज देने आती है, कहाँ, ये सब यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े जाते हैं। जीवन जीने का उद्देश्य उनको नहीं मालूम, नियमित रूप से जीवन जीना या शास्त्र में जीवन जीना वो तो बहुत दूर की बात है। हम जी जो रहे हैं ये कहीं किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ, किस तरह की लाइफ होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, वो तो बहुत दूर की बात है, उसको तो छोड़ दीजिए। भगवान को बिल्कुल साइड में, भगवान है ही नहीं, क्यों? क्योंकि यदि भगवान की बात करेंगे तो फिर इंद्र दीप्तियों के बीच में रुकाव आ सकता है। इसलिए केवल धन कमाओ और अच्छे से आहार ग्रह भय मंथन करो, ये सफलता है आज के, ये सफलता का पैमाना है आज के वातावरण में। और समझाते हैं, समझाते हैं कि आज का जो मानव है सबसे ज्यादा सभ्य मानव है। पहले तो प्राचीन आदि मानव होते थे, वो जंगलों में रहते थे, है ना, और वो शिकार करके खाते थे, ऐसे पत्थर से आग जलाते थे, ये शिक्षा दी जाती है स्कूलों में। और जब ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं शास्त्रों को, तो वो कहते हैं ये तो कुछ और ही है, यहाँ तो इतना, वहां ऐसा बताते हैं आदिमानव, ये माइथोलॉजी है काल्पनिक है, तो सारे शास्त्र काल्पनिक हो गए। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा मान दी गई है वो उससे मैचिंग होती है। यदि शास्त्र देखें तो हमारा जो पुराना जो समाज था वो हमारे आज के समाज से ज्यादा उन्नत था, यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो भी ज्यादा संपन्न था, ज्यादा सभ्य था। लेकिन वो जो शिक्षा हमें मिलती है उसके अनुसार करते हैं, इसका मतलब ये माइथोलॉजी है, ये काल्पनिक है, तो शास्त्र भी सारे खत्म। किसी प्रकार का कोई धार्मिकता सत्य से कोई मतलब नहीं है, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं। योगा है, योगा से क्या है, योगा से शरीर अच्छा धरे ताकि अच्छे से बाहर निद्रा में मैथुन हो, शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन उद्देश्य के लिए इतना क्या है, बाहर निद्रा में मैथुन अच्छे से हो। और जो भक्ति का स्थान ले लिया है देशभक्ति ने और राष्ट्रीयवाद ने और इन सब चीजों ने, ये भूल गए हैं कि संसार जो है तो टेम्परेरी है, ये राष्ट्रभक्ति देशभक्ति सब समाप्त हो जाएगा शरीर के साथ साथ। तो इसलिए प्रभाव कहते हैं स्लॉटर हाउसेज हैं, ये जो हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं ये सब स्लॉटर हाउसेज हैं, कसाई खाने। प्रभाव बोलते हैं कि हिंसा स्लॉटर हाउस में क्या हिंसा होती है, हिंसा का मतलब बताते हैं एक बार कि एक बार उनको बोलने के लिए बोला गया गांधी जी के जब मुंबई में थे पहले, तो गांधी जी की जयंती में कुछ बोलेंगे नॉन वायलेंस को बोलने के लिए, तो वगैरह मैंने बोला कि हिंसा का अर्थ है किसी को उसके अधिकार से वंचित करना, ये हिंसा होती है। तो क्या है मनुष्य जीवन का सबसे पहला अधिकार है भक्ति, भगवान के प्रति शरणागत होना, क्योंकि ये कार्य केवल मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। भक्ति को अधिकार समझ के करना चाहिए, अब कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य समझ के भी करते हैं जब शुरू के स्तर में होते हैं, शुरू में तो कर्तव्य भी नहीं समझते, डर के करते हैं, फिर धीरे धीरे पता लगता है कि हाँ मेरा कर्तव्य है, फिर धीरे धीरे जब उसकी रुचि बढ़ती है तो, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है भक्ति करना हमारा अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य तो भूल जाते हैं, अधिकार को भी नहीं भूलते, भूलते अधिकार को, सारी लड़ाई तो अधिकारों की इस संसार में। तो भक्ति को यदि हम कर्तव्य की बजाय अधिकार समझ के करें तो ज्यादा अनुकूल भाव, भगवान को प्रसन्न करना मेरा अधिकार है, भगवान की सेवा करना मेरा अधिकार है, क्योंकि ये केवल मैं कर सकता हूं मनुष्य जीवन में, बाकी किसी योनि में तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो उनके अधिकार से वंचित रखना ये बड़ी हिंसा है, और ये हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी कर रही है। तो जो वातावरण हिरण्यकश्यप के समय में था आज भी वैसे वैसे ही है कुछ कुछ, बल्कि ज्यादा ही समझे उससे, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही है। और एजुकेशन सिस्टम क्यों, जो माता पिता हैं अधिकांश वो भी इसी प्रकार की उनकी मानसिकता है जिस प्रकार की हिरण्यकश्यप की थी। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनकी संतान जो है वो आध्यात्मिकता में या भक्ति में जाए या उसमें आगे बढ़े, भौतिकता में बहुत आगे बढ़े, धन कमाए पहाड़ दर भय जो अच्छे से करे वो सब ठीक है, उसको उसके बारे में कभी उनको चिंता नहीं होती, मोबाइल में क्या करता है, इंटरनेट पे क्या करता है, बाहर क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं। मंदिर जाने लगे या माला हाथ पड़े तो फिर घंटी बजनी शुरू होती है, ये क्या बात है, कहाँ जाता है भाई, क्या करता है। तो ये आज का जो वातावरण है, जब कृष्ण जी ने बताया कि किसी को गुरु माता पिता पति देवता बनने का अधिकार नहीं है यदि वो अपने आश्रित को इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा सकता, ये वास्तव में माता पिता का गुरु का कर्तव्य है। लेकिन ना तो अधिकांश माता पिता इस कर्तव्य को करते हैं और जो तथाकथित गुरु है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो हमारे विद्यालयों में जो हमारा सिस्टम है तो चल रहा है, जबकि ये बचपन से ये संस्कार डालने चाहिए। अभी आज की शिक्षा प्रणाली जिससे बचना है तो बचपन से यदि हम माता पिता स्वयं करें और बच्चों को घर में स्कूल जाने से पहले 5 साल उनके पास है, 6 साल 7 साल और स्कूल में जाते हैं दूसरे बिगड़ता बच्चा, यदि 8-10 साल की आयु तक बच्चों को ये भक्ति के संस्कार दिए जाए अच्छे से, तो ऐसा बोला बच्चे जो गीली सीमेंट की तरह होते हैं, ग्लेशियर में आपको निशान डाल दीजिए तो वो निशान कभी मिटता है, सूखने के बाद परमानेंट हो जाता है। यदि बचपन में बच्चों को संस्कार दिए जाए तो भी संभव है, पूरी पूरी संभावना है कि जब 20-25 साल के बाद नास्तिक एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जब वो लौटेंगे तो उनके बचने की पूरी संभावना है, बच सकते हैं, क्योंकि बचपन में जो दिया संस्कार वो कभी मिटेगा नहीं, वापिस लौट के आने की उनकी पूरी संभावना है। यदि बचपन में नहीं दिया तो फिर कोई संभावना बहुत कम है, असंभव नहीं है लेकिन संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए प्रधान ने बोला कौमारा चक्रज्ञो, 5 साल की आयु से इस ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। तो बच्चे कैसे करेंगे, यदि माँ बाप नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? ये तो प्रहलाद महाराज है, अभी सभी तो प्रहलाद महाराज नहीं होते, तो इसलिए माँ का कर्तव्य बनता है, विद्यालयों में शिष्यों का कर्तव्य बनता है कि ये ज्ञान उनको दिया जाए। वास्तव में यदि व्यक्ति भक्त बनेगा तो फिर वो अच्छा व्यक्ति बन सकता है, अच्छा पुत्र बन सकता है, अच्छा पति बन सकता है, अच्छा पिता बन सकता है, अच्छा नागरिक बन सकता है, यदि भक्त है तो। यदि भक्त नहीं है तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता ठीक से। माता पिता यदि चाहते हैं कि उनकी संतान उनकी सेवा करे तो उनको भक्ति में लगाना चाहिए। एक परिवार को मैं जानता हूं, एक भक्त ने मुझे बताया कि उस परिवार में 3 पुत्र थे, 3 पुत्र हैं, तो उनका जो बड़ा पुत्र था उसने इंजीनियरिंग पास किया, इंजीनियरिंग पास करने के बाद वो चला गया कि पूना बॉम्बे की तरफ नौकरी करने के लिए। तो वहाँ पे इसको उनके भक्तों के संपर्क में संपर्क हुआ, उसका भक्ति में जुड़ गया, भक्ति करने लगा बहुत अच्छे से, और भक्ति में काफ़ी उसका रुचि हो गई। अंदर का उसने निश्चय किया कि वो विवाह नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करेगा। तो माता पिता बड़े चिंता हुए, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, रिश्तेदार इकट्ठे हुए, ये कैसे हुआ ये हुआ जैसे होता है आप सब जानते हैं। अंततः वो जो भक्त था उसने तो आश्रम ज्वाइन कर लिया। फिर माता पिता ने फिर क्या करते, वो दूसरा जो पुत्र था उनका यानी कि सेकेंड नंबर का, उसको विवाह कर दिया। तो ये तो विवाह करेगा नहीं, चलो इसका विवाह करना, उसकी आई हो रही थी विवाह की, तो उसको विवाह हो गया। तो बड़ा उत्सुक थे ना, हमारा बड़ा बेटा जा रहा विवाह नहीं करेगा कैसे होगा, उसको विवाह किया। उसको विवाह करने के 1 महीने पश्चात ही वो जो उसकी पत्नी थी जो यानी कि नई बहू आई थी, वो अपने उसको अपने पति को लेकर के अलग हो गई, माता पिता को यानी सास ससुर को छोड़ दिया, वो बेटा भी उसके साथ चला गया अलग घर लेके डाल। और फिर कुछ समय के पश्चात उनके पिता को जो है हृदय की बीमारी हो गई, उनको बाईपास सर्जरी हुई, तो 10-12 दिन उनको अस्पताल में रहना पड़ा। तो जो 2 पुत्र थे उनके पास, वो 10-12 में अपने काम धंधे बिजी थे, वही पुत्र जो ब्रह्मचारी था वो वहां से आया और उसने 10-12 दिन वहां पिता के साथ रह के अस्पताल में उनकी सेवा की। तो ये समझने की बात, यदि भक्त बनेगा तो वो भक्त तो सबको प्रेम करता है, तो माता पिता को प्रेम क्यों नहीं करेगा, माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेगा? वास्तव में भक्त ही माता पिता की सेवा करता है, सबकी सेवा करता है, माता पिता की, समाज की, देश की, अपने परिवार की, केवल एक भक्त कर सकता है। कई बार उसका सेवा करने का तरीका नहीं समझ में आता कुछ लोगों को, वो एक अलग बात है, लेकिन सेवा केवल भक्त कर सकता है, केवल एक भक्त ही अच्छा व्यक्ति बन सकता है। जो अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा तो वो अच्छा पुत्र कैसे बनेगा, अच्छा पिता कैसे बनेगा, अच्छा पति कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। खराब और भक्त से कुतो मत बोला, कोई गुण नहीं होता उसमें जो भक्त नहीं। तो प्रहलाद महाराज के उदाहरण से हम देख रहे हैं, हालांकि उनके अध्यापक भी उनके खिलाफ है, घर में पिता खिलाफ है, यानी कोई कहीं तरह से भी जो है उनको कुछ प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने जो है भक्ति को संपन्न किया। और फिर हालांकि सब लीला है, लेकिन जो लीला हमारे सामने उसको हम देख सकते हैं कि उनकी भक्ति की वजह से हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। लक्ष्मण क्या बोला कि आप जैसे भक्त की तो कई पीढ़ियां तर जाती है, आप खाली अपने पिता की बात कर रहे हो, आप जैसे भक्त की तो कई पीढ़ियां तर जाती है। तो किसने सेवा करी, प्रहलाद महाराज ने, यानी कि भक्ति जो है वो सफल हर क्षेत्र में सफल है। लेकिन यहां क्या बोला जा रहा है, यहां बोल रहे हैं भला उस लायक में पूछ रहे हैं आज के श्लोक में, जब किसी विरोधी व्यक्ति से कुछ आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो चार तरीके होते हैं, साम दाम कर्ण भेद। साम मतलब पहले प्यार से समझा के, जैसे क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारा क्षेम हो, कल्याण हो, पुत्र प्रहलाद, अगले श्लोक में बोल रहे हैं कुल श्रेष्ठ, अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, कि फुसला कर के सब बता देगा। और जब नहीं बताता इससे बात नहीं बनती है साम से, तो फिर दाम, दाम मतलब कुछ उसको प्राइड करना है, मनी नेम फेम पोजिशन कुछ ऑफर करना है, उससे बताएगा। उससे भी नहीं बताता तो फिर भेद, उसके किसी मित्र के साथ उसकी फूट कराओ आपस में, तो वो एक दूसरे का भेद बताएंगे, और फिर नहीं तो फिर अंत में डांट, ताड़ना, डरा धमका के। तो यहाँ तो अभी उसको समझा के भला फसला के पूछ रहे हैं कि बता दो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, बाकी जो विद्यार्थी होंगे तो नहीं बिगड़ी, मतलब हमने नहीं बिगाड़ी बुद्धि, अगर हम बिगाड़ते सबकी बिगड़ती ना, तुम्हारी बुद्धि की ओर बिगाड़ रहा है, कौन बिगाड़ रहा है बताओ है? तो यह सुनो की मानसिकता है, वो हमेशा उल्टा सोचते हैं। जैसे गीता में बता रहे हैं अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार तामसी, ये तामसी बुद्धि है, वो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझते हैं। वास्तव में प्रहलाद महाराज की बुद्धि ठीक है केवल यहां इस प्रसंग में, बाकी सबकी बिगड़ी हुई है। देखो कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, किसने बिगाड़ी है बताइए। तो ये असुरों के लक्षण है, वो हमेशा उल्टा चलते हैं, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझना, ये असुरों का स्वभाव है। तो भक्ति जो है, जैसे प्रहलाद महाराज के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, कोई भी भौतिक परिस्थिति क्यों ना आए, भक्ति जो है हम कर सकते हैं उसमें, और प्रसन्नता के साथ में। भक्ति हमेशा प्रसन्नता से की जाती है, रोते भी नहीं या अफसोस मनाते भी नहीं, जब प्रसन्नता से करेंगे तो फिर प्रसन्नता मिलेगी, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, फिर ये हमारे को प्रसन्नता देती है, फिर जब प्रसन्नता मिलेगी तो वो प्रसन्नता से करेंगे तो फिर वो प्रसन्नता मिलेगी, आनंद अनुभूति वर्णन। तो इस प्रकार से ये आनंद का वर्धन होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो किसी भी भौतिक परिस्थिति से घबरा करके या उससे तंग आकर कभी भी भक्ति साधना से पीछे नहीं हटना चाहिए, इसको प्रसन्नता के साथ में करते रहना चाहिए, ये शाश्वत है, इसका परिणाम अवश्य मिलता है, और इसका परिणाम क्या है, कृष्ण प्रेम, वो अवश्य मिलेगा। ये हम प्रहलाद महाराज के उदाहरण से हो सकते हैं। तो और भी बहुत चर्चा है, आगे प्रसंग चल रहा है, हम सुनते रहेंगे। तो आज यही विराम देते हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपको जिसमें ऐड करना चाहें, कोई आपकी कमेंट्स हो या कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। समझा के पहले पूछना, जैसे कि हम पूछ रहे हैं किसी विरोधी से आपको इन्फॉर्मेशन लेने, तो पहले समझा करके प्यार से, जैसे अगर फैला के फुसला के तो प्यार से उसकी प्रशंसा करके, तो उससे पूछने का प्रयास करते हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दाम, फिर उसको उस प्रलोभन देना, कुछ भौतिक प्रलोभन, धन का, पोजिशन का, इस प्रकार कोई भी, तो शायद उसको बताएगा लालच में आके, है ना। जैसे बच्चे बोलते हैं बेटा बताओ टॉफी देंगे, बोलते हैं ना आओ बेटा पहले प्यार से पूछते हैं, बेटा टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, है ना। तो ये शाम फिर दाम, है ना, नहीं तो फिर उसके किसी मित्र से पूछते हैं तुम बताओ कुछ भेद कराए, वो नहीं बताता तो तू आपस में दोनों का भेद कराते हैं, तो फिर वो बताएगा उसके बारे में, तो भेद डालना डिवाइड, और नहीं तो फिर कट, फिर उसको उतारना, डरा के धमका के, जो मंत्र में मंत्र क्या करते हैं आप, तेरे को थप्पड़ पड़े बताते हैं कि नहीं, है ना। तो ऐसे साम दाम दंड, ये नीति है, ये नीति का विषय है। जी बोलिए।
सारे किस्म के उपाय भी करते हैं। आजकल अगर कोई अच्छी अच्छी बात करने लगते हैं ना किसी से भी अपने रिश्तेदारों से परिवार से, तो कहते हैं इसका तो माइंड वॉश हो गया, इसको और मिजाज खराब हो गया है, ये अमूमन सुनने को मिलता है।
नहीं, माइंड वॉश तो हो गया तो अच्छा है। इस कॉन में जाके माइंड वॉश तो करना है, चेत तो दर्पण मार देना, लेकिन खराब हो गया ये ऐसा नहीं, ये ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन से क्या हमें लेना है, हमें तो शास्त्र को जानना है कि क्या खराब है और क्या ठीक है। तो शास्त्र तो कहते हैं कि ये ठीक है वास्तव में, बाकी सब खराब है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, तो उनको बोले नहीं, हाँ माइंड वॉश हो गया वो तो है, सभी का होना चाहिए।
हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी, प्रश्न ये है कि आज के जब बच्चों को भेजते हैं स्कूल कॉलेज में, आपने बताया था, तो उस वातावरण से बच्चों को कैसे बचा के रख सकते हैं?
ये तो बहुत लंबा विषय है। जैसे पीछे हमारे यहाँ पे बताए थे यूएसए से, उन्होंने होम स्कूलिंग की बात की थी, पर वो भी इतना व्यवहारिक नहीं है हमारे आज के वातावरण में, या फिर हमारी संस्था या अपने स्कूल हों। और नहीं तो ये है कि यदि हमने बताया जैसे कि हम बचपन से बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, और घर में यदि आप देते हैं, क्योंकि वो बाहर जो सीख करके आ रहे हैं फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो माता पिता का कर्तव्य ऐसे वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो उनको भक्ति देना, ये माता पिता का कर्तव्य है, वो उसमें जो है उनको सुविधा प्रदान करें, और बाहर से जो वो कंटेमिनेशन उनको मिल रहा है उसको सफाई करने के लिए भी फिर मेहनत माता पिता को करनी पड़ेगी, तो उनके जुदा में ज्यादा बढ़ जाती है।
हरे कृष्ण, आपने कहा कि भक्ति स्वभाव कैसे नहीं मिलती है, भाग कैसे नहीं मिलती है, या भाग कैसे कुछ नहीं, तो प्रहलाद महाराज के पूर्व चरित्र में हम देख रहे हैं कि वो उनके मतलब संगति हुई नारद जी से, नारद जी ने कथा सुनाया, मतलब क्या दो मास में तो कथा का कोई प्रभाव नहीं उसके ऊपर पड़ा, लेकिन प्रहलाद के ऊपर एक प्रभाव पड़ा, सौभाग्य से नहीं प्राप्त होगा तो किस कर्म से, किस प्रभाव से उनको प्राप्त?
हम यदि इसके पीछे तक जाएंगे तो हम पाएंगे भक्ति के कारण केवल भक्ति ही है, ऐसा बताते हैं श्री विष्णु चक्र ठाकुर मथुरिकांति में कि भक्ति के कारण केवल भक्ति है, ये तो बिल्कुल स्थापित तथ्य है। उसको सौभाग्य जो है भक्ति उन्मुख स्वीकृति होगी तो वो भी कैसे मिलती है, भक्ति से मिलती है, किसी वैष्णव की सेवा करेगी या आपने किसी प्रकार से भी भगवान की सेवा में वैष्णव की सेवा में कुछ कार्य किया, अज्ञात स्वीकृति तो वो भी कैसे मिली, क्योंकि आपने भक्ति उन्मुख कार्य किया, तो भक्ति का कारण केवल भक्ति है, भक्ति के कारण कभी कोई किसी प्रकार का आपका भौतिक शुभ कर्म या और कुछ भौतिक कारण नहीं सकता, केवल भक्ति से ही उसको भक्ति मिलती है, भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र किसी भौतिक कारण पर निर्भर नहीं करती। ऐसा मैंने कथा सुनी है, मुझे आई एम नॉट श्योर कि पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज के नरसिंह देव के मंदिर में उन्होंने दर्शन जयंती के दिन पूरा दिन उपवास किया, तो उनको जो वो जो सुकृति मिली तो वो भी क्या है, भक्ति है, उसको शुभ कर्म नहीं बोलेंगे, तो भक्ति उनमें सुकृति है, तो भक्ति के कारण केवल भक्ति है और कुछ नहीं, भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, वो कभी भी किसी भौतिक अवस्था पे भौतिक परिस्थिति पे ना तो वो उसको भौतिक परिस्थिति भक्ति को उत्पन्न कर सकती है, ना ही वो भक्ति के बढ़ने में या भक्ति को रोकने में उसका कोई किसी प्रकार का भी कोई वो है, भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाशित। इस प्रकार जब हम भगवान जो है स्वयं प्रकाशित होते हैं, इस प्रकार की भक्ति भी अपनी इच्छा से, यदि इच्छा भागवतम के 11वें स्कंद में जब उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में बोला, यदि इच्छा अपनी इच्छा से स्वयं प्रकाशित होती भक्ति, कोई भौतिक कारण उसका नहीं। ठीक है, तो समय हो गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तंत्राशीन भागवतम ही।